कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आज का टॉपिक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। आज की जिंदगी में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अचानक में आने वाले चैलेंजेस होते हैं। किसी ने खूब कहा है, चलना कला नहीं है परंतु रस्सी पर चलना बहुत बड़ी कला है। तो हमारे जीवन में नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं तब हम चलते हैं, खुश रहते हैं, डील करते हैं, दैट्स ईजी। पर जब चैलेंजेस आते हैं तब हम कितना उनको फेस कर पाते हैं, कितना हम उनको डील कर पाते हैं और कितना उन चैलेंजेस में हम खुश रह पाते हैं, अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं, दैट्स अ चैलेंज। तो उसके लिए हमें क्या पावर्स चाहिए, क्या शक्तियां चाहिए, क्योंकि किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी वर्क पोजिशन पे रहने वाला व्यक्ति हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है जिसको डील करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए गांधी जी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है, द डिफरेंस बिटवीन वॉट वी आर डूइंग एंड वॉट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग वुड सॉल्व मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। इफ दिस डिफरेंस इज मेट, तो वॉट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे उन चैलेंजेस के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी वक्ता, भले ही आयु से आपको छोटी दिख रही हैं लेकिन इनके जीवन के अनुभव और इन्होंने जिस तरह से अपने आप को निखारा है वो बहुत अच्छे हैं। तो हम जिस तरह से संघर्षों के लिए कहते हैं कि संघर्ष इंसान को निखारते हैं, लेकिन कभी कभी संघर्ष बिखेर भी देते हैं, तो हम बिखरे ना बल्कि और निखर जाएं उसकी कला आप बताएंगी। विधात्री बहन इंजीनियर हैं, आप मेडलिस्ट रही हैं, प्रोफेशनल रही हैं जिन्होंने आईपीएम में जॉब किया है, एंड शी इज एन आर्टिस्ट हु फाउंड रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी एंड डेडिकेटेड हरसेल्फ फॉर द रियल कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हेन शी वाज डूइंग हर बीटेक एट दैट टाइम शी सरेंडर्ड हरसेल्फ टू ब्रह्म कुमारीज आफ्टर डूइंग द बीटेक एंड लीविंग हर जॉब। उस समय 2008 में जब आप बीटेक कर रही थी तब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई थी। आपने कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टॉपिक्स पर लेक्चर्स लिए हैं। मुख्यतः आपने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अनेकानेक मिनिस्ट्रीज में, साथ ही आपने डीएमआरसी, एनएचपीसी, ग्लोबल लॉजिक, नेस्ले, मारुति सुजुकी, होंडा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आपने अपने सेशंस दिए हैं। आपने गीता का भी गहराई से अध्ययन किया है और गीता पर आधारित सीरीज ऑफ इंटरैक्शंस भी डिलीवर किए हैं। कई नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी आप लेक्चर्स दे चुकी हैं और बहुत कम आयु में स्पिरिचुअलिटी के कई आयाम पार करते हुए आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी को उतारा है और अपनी नम्रता और बुद्धि कौशलता से अनेक आत्माओं को जागरूक करने का भी कार्य किया है। ऐसी विधात्री बहन से हम आज के टॉपिक पर सुनेंगे। ओवर टू विधात्री बहन। जो लोग पीछे बैठे हैं, मेरा निवेदन है आप सभी आगे आ जाइए तो आपको भी अच्छा लगेगा और यहां से भी हमें अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आगे आ जाइए। ओम शांति। विधात्री बहन का स्वागत फूलों और बैचेस के द्वारा।
शांति। आज का ये जो टॉपिक है, जैसे और सभी टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण लग रहे होंगे आपको, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि कई बार आप सोचते होंगे कि शांत रहना, अपने मन को बहुत पीसफुल रखना, कोई भी चीज आए, ये यहाँ इस कैंपस में बैठ के बोलना तो बहुत आसान है। लगता है आपकी मुस्कान बता रही है कि आपके मन में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि ब्रह्मा कुमारी तो बहुत शांत है, लेकिन उनको करना ही क्या पड़ता है। आश्रम पे रह करके तो हम भी 4-5 दिन कहाँ किसी पे कुछ गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ कुछ कह रहे हैं। यहाँ रह करके तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन बात तो तब हो जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, वहां कोई शांत रह के दिखाए। आया है आपके मन में ये बात? आई है तो उसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि भले आप शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन वहां है जहां पे एक्चुअली चैलेंजेस हैं, वहीं पर इसका ट्रू एप्लीकेशन है और वहां आप इस चीज को अप्लाई कर सकें। ये सुनने से लेकर के, जैसे अभी इसके पहले वाले सेशन में स्वामी भाई जी बता रहे थे, एक है साइंस, एक है अप्लाइड साइंस, एक है मैथ्स, एक है अप्लाइड मैथ्स। तो ये स्पिरिचुअलिटी, यहां बैठ करके हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करें? From listening to becoming। तो उस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई बार हमारी ये मान्यता होती है कि अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइफ की, तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में अभी तो टाइम नहीं है। चलो टाइम निकाल के हम 3-4 दिन यहाँ आ गए, इससे ज्यादा रोज करने का टाइम नहीं है। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद टाइम निकाल के हम भी यहीं आ जाएंगे। कई लोग तो कहते हैं हम भी बहन जी आपके पास ही आ जाएंगे, एक बार हमारी रिटायरमेंट होने दीजिए, एक बार हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होने दीजिए। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले और आगे बात करने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस को एक बार देख लेते हैं। आपके घर में कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है, आपका मोबाइल का चार्जर है, उसके लिए जो आप चार्जर यूज करते हैं उसमें कितनी पिन्स होती हैं? कितनी पिन्स होती हैं? यूजुअली 2 पिन्स होती हैं। और यही अगर आपको कोई हैवी अप्लायंस रन करना है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, तो जो आप उसका जो आप पावर प्लग यूज करते हैं उसमें कितनी पिन्स होती हैं? थ्री पिन्स, वो सभी को अनुभव है. अच्छा, वो थर्ड पिन क्या करती है? अर्थिंग करती है. वो अर्थिंग का क्या मतलब होता है? वो क्यों जरूरी है जी? हाँ जी, हाँ. एक्चुअली उसका अगर सिंपल भाषा में बताएं तो क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है उसका? ये यूजेज है, आप लोग कह रहे हैं लेकिन शायद मुझ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है. उसका उसका एप्लीकेशन, उसका यूज ये होता है कि अगर आपकी लाइन में कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं वो आपके लोड को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए बीच में ही उनको रीरूट करके अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है. सो इट इज लाइक कि आपका जो लोड है, क्योंकि वो हैवी लोड है, वो सुरक्षित रहे, इसलिए पहले ही उस चैलेंज को फोर्सी करके उसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाल लिया जाता है. एम आई राइट? अब जब हम कहते हैं कि यहां लोड बहुत ज्यादा है लेकिन हम दो पिन पे ही काम चलाएंगे, जब यहां का लोड खत्म हो जाएगा फिर हम थर्ड पिन लेने के लिए आ जाएंगे, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? आपको थर्ड पिन कब चाहिए, जब लोड है या जब लोड खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब लोड है उसी समय पे कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं, आए दिन फ्लक्चुएशंस आती हैं, हर व्यक्ति के द्वारा आती हैं, जिससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता उससे ज्यादा आती हैं. उन सब फ्लक्चुएशन से हमारे लोड का क्या हो जाता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं फ्यूज उड़ जाता है, होता है. तो ये थर्ड पिन हमें क्यों चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, वो हमें उससे ग्राउंड कर देता है जो सारे हमारे उन फ्लक्चुएशंस को एब्सॉर्ब कर लेता है और हम तक उसका प्रभाव आने नहीं देता. अगर मैं इस पूरे सेशन का एक लाइन में इसकी डिटेल हम समझेंगे क्यों, कब, कैसे, लेकिन इस पूरे सेशन का इम्पोर्टेंस यही है कि जब चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस से हमारे मन पर, हमारी एफिशिएंसी पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारे वर्क पर कोई असर ना आए, नेगेटिव असर ना आए, उसके लिए हमें ऐसी कोई शील्ड चाहिए जो हमें उस चैलेंज से बचाए और उस चैलेंज से ज्यादा पावरफुल बनाए, विच इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर देन चैलेंजेस. सो डू यू फील इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी कि हाँ जी हमें ये चीज जाननी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. तो टू बिगिन विद, let us just have a small look and let us try to read. एक बारी हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं. आप चाहें तो जोर से भी पढ़ सकते हैं. You can read it aloud. आप जोर से भी पढ़ सकते हैं. You can read it aloud. पढ़ लिया? समझ में आ गया? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. अब ये हमारा मन है. हमारा मन इतना वंडरफुल टूल है. आप इसे डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन देंगे ना तो ये अपने प्री कंसीव्ड नोशन के हिसाब से अपने आप उसका अर्थ निकाल लेगा. अगर आपको इन शब्दों का अर्थ पता नहीं होता तो आप कभी भी ये पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पहले से आपके मन में इसको इसका अर्थ है. पहले से कुछ ना कुछ आपने अपने मन में धारणाएं बना रखी हैं कि ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. तो आपके सामने डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन आती है, उसको भी आप अपने ढंग से, अपने रेफरेंस से कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ दिस इज वेरी यूजफुल एज यू कैन सी, बट दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो. समझ गए क्यों? इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो. दो लोग बात कर रहे हैं और आपके वहां पहुंचते ही वो लोग चुपचाप अपने अपने काम में लग जाते हैं. अब इस सिचुएशन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि पहले से आपने उन लोगों के प्रति अपने मन में क्या धारणा बना रखी है. इस सिचुएशन को आप सिंपली इग्नोर करके अपना काम करने लग जाएं, या आप समझे कितनी मेरी रिस्पेक्ट है, मेरे आते ही चुप हो गए, या आप समझे पक्का मेरी बुराई कर रहे थे इसीलिए मेरे आते ही देखो कैसे सन्नाटा हो गया. अब सिचुएशन अच्छी भली थी, ये कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन इस चीज को आपने अपने सोच के अनुसार हो सकता है नेगेटिव दिशा में लेकर के अब ये धीरे धीरे करके ऐसी और एक दो घटनाएं हो जाएंगी, अब वो व्यक्ति चैलेंज बन गया, अब वो सिचुएशन आपके लिए चैलेंज बन गई. ये हर कोई मेरे आते ही चुप क्यों हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है मुझसे उनको, ये हमारे मन की रचना है. 90% ऑफ द सिचुएशंस वी फेस आर द क्रिएशन ऑफ अवर माइंड बिकॉज माइंड इज सच अ पावरफुल टूल. सो इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन. ये हमारा परसेप्शन है. आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? गुड. अंदर स्पेसेस पढ़िए, व्हाइट ब्लैंक्स पढ़िए. यहां क्या दिखाई दे रहा है? अब नेक्स्ट टीच रिफ्लेक्शन पढ़े तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए, अब आपको पता चल गया है पहले दो इंस्टेंसेस में कि जो दिख रहा है वो नहीं, मैं कुछ और दिखा रही हूं. तो अब आपने पहले ही वो देख लिया. जो देखिए कितना फास्ट माइंड में अब कई लोगों ने मी से पहले यू बोल दिया, क्योंकि आपको पता है मैं अभी क्या बोलने वाली हूं इसके बाद. हमारा माइंड कितना जल्दी अडेप्ट भी कर लेता है. सो मी दिख रहा है बाहर से और अंदर से क्या दिख रहा है? यू. यहां क्या दिख रहा है? तो ऐसा लगता है कि ये एक साइकिल है या एक मोटरबाइक है, बाइक है, लेकिन ये दो टेंडर्स के ऊपर एक ग्रास हॉपर बैठा हुआ है. सो हाउ यू लुक एट अ सिचुएशन, आप क्या देख रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर, ये उस सिचुएशन से आप कैसे डील करने वाले हैं, ये उस चीज को निर्धारित करता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन. नाउ इफ आई मे आस्क यू, सिचुएशन एंड चैलेंज, अब इन दोनों चीजों को अगर हम देखें, आर दे द सेम? क्या ये दोनों बातें एक है? सिचुएशन और चैलेंज, क्या ये दोनों बातें एक हैं? कई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या डिफरेंस है सिचुएशन में और चैलेंज में? क्या डिफरेंस है? नॉट एवरी सिचुएशन इज अ चैलेंज. सो चैलेंज इज अ सबसेट ऑफ सिचुएशन. तो एक सिचुएशन को चैलेंज क्या बनाता है? हां जी, हमारा परसेप्शन. चलिए वो तो हो गया, वो तो डिस्कस हो गया, अब और कुछ आने वाला होगा तभी पूछ रहे हैं. वो तो हो गया. ऐसा क्या है जो सिचुएशन को चैलेंज बनाता है? आपको सिंपल सा उदाहरण देते हैं. आप में से कितने लोगों को, आप तो बहुत तजुर्बे वाले हैं लेकिन बहुत बेसिक चीज पूछ रही हूं, आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? लगभग सभी को. आज नहीं चलाते लेकिन आती है. याद कीजिए वो दिन, या चलिए गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, आज भी क्या पता चलाते हो कभी अदा कदा. याद कीजिए वो दिन जब आप पहली बार साइकिल पर चढ़े, या गाड़ी सीखने के लिए पहली बार गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे, कैसा था वो दिन? हाँ, एक्साइटेड. और उस दिन साइकिल इतना इजी थी चलानी? गाड़ी चलाते समय उस समय दिल की धड़कन कैसी होती थी? और आज के दिन अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान भी रहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं? गाड़ी भी चल रही है, गाना भी बज रहा है, बात भी कर रहे हैं, फोन भी आ रहा है, खा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. गाड़ी भी, जब ब्रेक लगना है तब ब्रेक भी लग जाता है, जब गियर चेंज करना है तब गियर भी चेंज हो जाता है, जब इंडिकेटर देना है सब कुछ करते करते वो भी हो रहा है, इतना इजी हो गया है। उस दिन में जिस दिन पहले दिन बैठे थे हम ड्राइवर सीट पे और आज के दिन में, तब वो चैलेंज था, आज वो सिचुएशन है, एक सिंपल एक्ट है। उस चैलेंज को सिंपल किस चीज ने किया? प्रैक्टिस ने। प्रैक्टिस भी किस चीज की? सो एक्चुअली इफ वी गो बाय द इक्वेशन, देन चैलेंज इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, सिचुएशन जितनी बड़ी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, चैलेंज को क्या होगा? चैलेंज को क्या होगा? हाँ, सिचुएशन बढ़ती जा रही है तो चैलेंज को क्या होगा? आवाज नहीं आई, बढ़ेगा। अग्री करते हैं? कौन कौन अग्री करता है कि अगर सिचुएशन बढ़ती जा रही है तो चैलेंज बढ़ेगा? अच्छा, सबने हाथ नहीं उठाया। तो चैलेंज, सॉरी, सिचुएशन बढ़ रही है तो चैलेंज घटेगा, ये कौन कौन कहते हैं? घटेगा, कम होगा। अच्छा, कारण? कारण, ओके, वो तो आप कुछ कर रहे हैं तब हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जब भी न्यूमरेटर इंक्रीज होता है, अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो कोशेंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। सिर्फ सिचुएशन के बढ़ने से चैलेंज नहीं बढ़ेगा, अगर कोपिंग एबिलिटी कांस्टेंट है और सिचुएशन बढ़ रही है तो चैलेंज बढ़ रहा है, क्योंकि जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा एडवर्स सिचुएशन आ रही है। लेकिन अगर सिचुएशन बढ़ रही है और आपकी कोपिंग एबिलिटी डबल रेट से बढ़ रही है तो हाफ हो जाएगा चैलेंज। सो हम जब ये सोचते हैं या कई बार कहते हैं सिचुएशन ही ऐसी थी, हमारे सामने सिचुएशन ही ऐसी होती है, सिस्टर आप क्या जानो, तो अंदर ही अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यहां हम क्यों आए हैं? यहां आके हम कह रहे हैं भगवान का घर है तो ऐसे कोई वरदान नहीं मिल जाएगा आपको कि सिचुएशन ही नहीं आएगी आपके सामने। आपके सामने नहीं आएगी तो किसके सामने आएगी? लेकिन ये वरदान जरूर मिल जाता है कि यहां आकर के आपको वो तरीका पता चल जाएगा जिससे हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सके। अगर डिनोमिनेटर बिल्कुल लो है, टेंडिंग टू जीरो, व्हाट विल बी द चैलेंज देन? उस इक्वेशन को याद करें, इन्फिनिटी। कभी कभी ऐसा होता है आपने किसी व्यक्ति से बस इतना सा पूछा कि भाई ये काम आज हो जाएगा, ये काम हो जाएगा ना, आज भी नहीं भाई ये काम कर रहे हो ना, हो जाएगा ना, सामने से रिस्पॉन्स आएगा एकदम ब्लास्टिंग, कर ही तो रहे हैं सर, अभी क्या करें, हम भी तो इंसान ही हैं, हमारे भी तो घर में बच्चे हैं, हमको तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। आप बोले कि ठीक है, इतना ही तो पूछा था, कौन सा कहा है कि अभी करके दो, इतना ही तो पूछा है। तो आपके वो वन यूनिट प्रेशर देने से भी इतना क्यों उनके ऊपर चैलेंज खड़ा हो गया? क्योंकि उस समय उनकी स्थिति, मन की स्थिति, सहन शक्ति, कोपिंग एबिलिटी, क्या पता बिल्कुल लोएस्ट पिच पे आई हो। सो इट वॉज नॉट बिकॉज यू आस्क्ड समथिंग विच वॉज इररिलेवेंट और इनह्यूमेन, बट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पर्सन माइंड, की उनकी कोपिंग एबिलिटी, उनकी क्षमता इस समय कितनी कम है, जो इतनी सी बात भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे। और यही अगर आपका डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, फिर नो चैलेंज। कितना भी बड़ा सिचुएशन हो, न्यूमरेटर का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है। एंड ये भी एक स्पिरिचुअल सिद्धांत है, आपके सामने वही सिचुएशन आएगी जो कर्म के हिसाब किताब के कारण से कभी रची गई है आपने, उससे उससे बियॉन्ड नहीं आ सकती. सो न्यूमरेटर सिचुएशन कैन नेवर बी इन्फिनिटी फॉर यू. डू यू बिलीव इन दिस कर्म फिलॉसफी? राइट, जो हमने कभी किया है वही एक प्रकार से हमारे सामने आता है. आवर फ्यूचर वॉज क्रिएटेड इन आवर पास्ट. सो सिचुएशन कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती. कोई बना ही नहीं सकता उसको इन्फिनिटी, लेकिन कोपिंग एबिलिटी को इनफाइनाइट बना सकता है. कौन कौन कौन? बहुत धीरे धीरे डाउटफुल है, अभी भी डाउटफुल है. कौन बना सकता है? हम बना सकते हैं. और इसी प्रोसेस को, उसी विधि को हम राजयोग कहते हैं, विच इज द की to emerge stronger than challenges. So we don't say that challenges won't come. Challenges नहीं आएंगे. आपके घर में दो लोग आ जाएं, दो मेहमान आ जाएं, चार मेहमान आ जाएं, चार दिन के लिए, कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ? आप यहाँ पे इतने सारे हैं, हमें कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है. हम तो आप जाएंगे उसके तुरंत बाद दूसरे के आने का प्रबंध करते हैं, खाली ना रहे एक भी दिन यहां पर. क्यों क्यों? राइट, सो हमारे सामने, सबके सामने सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हम उन सिचुएशन से कैसे डील करते हैं ये हम सबकी कोपिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है. एंड जिसके पास ज्यादा सिचुएशंस आने वाली हैं, आपको पहले से ही पता है आपकी पोजीशन ऐसी है, आपका काम ऐसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आपके पास सिचुएशन आने वाली है, आपको पहले से पता है, देन व्हाट शुड वी डू? शुड वी ट्राई टू डेलीगेट? शुड वी ट्राई टू रन अवे? शुड वी ट्राई टू अवॉइड? शुड वी ट्राई टू ब्लेम? नो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू इंक्रीज अवर कोपिंग एबिलिटी. एज सिंपल एज दैट. सो हाउ डू वी इंक्रीज आवर कोपिंग एबिलिटी नाउ? तो सबसे पहले जब कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, सबसे पहला क्वेश्चन, सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम नहीं आई है, चैलेंज नहीं आई है, अभी तक उस सिचुएशन को आपने चैलेंज में देखा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बना उसको बनाया है, तो सिचुएशन के लेवल पर ही आप पूछ लीजिए अपने आप से, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए प्रॉब्लम है? इस बात के दो उत्तर होंगे. अगर इसका उत्तर है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, देन वाई वरी? ठीक है, सिचुएशन आई है, आपको गाड़ी चलानी है, आपको आती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो जाएगा. अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्या इस प्रॉब्लम का मेरे पास सोल्यूशन है? इसके भी दो उत्तर हो सकते हैं. अगर इसका उत्तर है कि हाँ प्रॉब्लम है पर सोल्यूशन भी है, तो वाई वरी? और अगर इसका आंसर है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं है, फिर ये समय चिंता करने का है? डू वी हैव द टाइम टू वरी? इज देयर एनी यूज टू वरी? नो, देन इट इज द टाइम टू क्रिएट सोल्यूशन. इट इज नॉट द टाइम टू वरी. सो किसी भी हालत में वरिंग, चिंता, स्ट्रेस इज नॉट द सोल्यूशन. वाई वरी? अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो चिंता की बात नहीं, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी है तो चिंता की बात नहीं, और प्रॉब्लम है सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन फाइंडर कौन? हम ही तो हैं. तो उस समय अपने मन में अगर आपने चिंता को बैठा लिया तो सॉल्यूशन कहां आके बैठेगा? फॉर अ पर्सन टू कम एंड सिट नेक्स्ट टू यू, यू शुड हैव अ स्पेस वेकेंट फॉर दैट पर्सन टू बी सीटेड. If there is no vacancy, where will that person come and sit? तो पहले ही आपने invite कर लिया चिंता को, अब solution कहाँ आके बैठेगा? जितने भी solutions आज खोजे गए हैं, भले वो scientific हो या कोई भी हो, they've all been a result of silent introspections. मैडम क्यूरी पूरे दिन रात अपनी होम लैब में बिताती थी, लेकिन solution नहीं आया. और कब आया? जब उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दिया, भले नींद में क्यों नहीं. आर्किमिडीज, उसको पता था अगर मैंने नहीं बताया इस बात का जवाब किंग को तो मेरी मृत्यु तय है. चिंता में दिन रात खोजता रहा नहीं आया। जब मान लिया कि अब तो मरना ही है, अब एक बार आखिरी बार नहा लो, बाथटब में गया और यूरेका। न्यूटन खाली बैठा था पेड़ के नीचे, तो सोचने तो दिमाग में आया ना, ये एप्पल नीचे ही क्यों आया। तो एवरी इन्वेंशन, एवरी सॉल्यूशन हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ साइलेंट इंटरवेंशंस। सॉल्यूशंस आर वेरी टची। थोड़ा सा भी अगर आपने हल्का सा भी टेंशन को टच करा दिया तो वो बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। सो क्रिएटिव थिंकिंग सॉल्यूशन हैज टू कम टू एन टू अ माइंड विच इज फ्री ऑफ वरी, फ्री ऑफ टेंशन। सो नाउ व्हाट डू वी डू देन? हर इवेंट, हर सिचुएशन हमें कुछ सिखा रही है। क्या बता रही है? सबसे पहले तो हमें ये दिखा रही है कि हम किन किन चीजों से अभी तक भी रिजर्व्ड हैं, अभी तक भी हमें डर लगता है, अभी तक भी हम रिजर्व्ड हैं। डर का मतलब कोई जीव जंतु से डरना या वो नहीं है। कई अभी हमने पहले भी सुना, मौत का डर, अपनों के बिछड़ जाने का डर, अपनी निंदा हो जाने का डर, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी इमेज का क्या होगा, उसका डर। कई प्रकार के डर होते हैं, कई प्रकार के डर होते हैं। कई बार दूसरे की इतनी चिंता कर बैठते हैं कि उसका भी डर, अगर इसका कुछ हो गया तो क्या होगा। कई बार हम ऐसे भी होते हैं, हमारे साथ सब कुछ ठीक है लेकिन ये ऐसा तो होना चाहिए। कंसर्न इज वन थिंग बट दैट कंसर्न बिकम्स अ फियर। सो व्हेन वी बिकम फियरलेस लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। सो सिचुएशंस कम, इवेंट्स कम टू शो अस कहां कहां अभी तक भी हमारी अटैचमेंट्स हैं और कहां कहां अभी तक भी हम चिंता के कौन कौन से द्वार खुले हुए हैं अभी भी। सो देयर आर वेरी गुड साइन, देयर आर वेरी गुड इवेंट्स, सिचुएशंस बहुत अच्छा मिरर है, आईना है, जो हमें बताते हैं अभी तक भी यहां यहां ये द्वार मैंने चिंता के खोल रखे हैं। दूसरा, एनी सिचुएशन दैट कम्स टू अस कम्स टू टीच अस समथिंग एंड इट विल नॉट गो अवे until you have learned the lesson. जब तक उस चीज से जो lesson हमें सीखना है, अभी बच्चा है, exam देगा, मान लीजिए 5th class का exam देगा, जब तक 5th class के exam को वो पार नहीं कर लेगा 6th में नहीं आ सकता। कितना भी exam को टाल ले, कल दूंगा, अगले साल दे दूंगा, वो उसी class में अटका रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिस दिन एक बार उसने वो एग्जाम पार कर लिया, वो एग्जाम पेपर दोबारा कभी उसके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। तो अपने उस सिचुएशन को हमेशा से खत्म करने का एक ही तरीका है, लर्न व्हाट इट हैज कम टू टीच यू एंड मूव अहेड। सो वी हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम एवरी सिचुएशन। ये व्यक्ति मेरा पेशेंस बढ़ाने के लिए आया है मेरी जिंदगी में। ये जब तक नहीं जाएगा, इसका तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक मेरा पेशेंस ना बढ़ जाए। और एक बार आपका पेशेंस बढ़ गया, फिर वो व्यक्ति रहे ना रहे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड वी हैव ऑल गॉन थ्रू, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर। बस ये है कि ये स्थान, ये वातावरण जो आप करते आए हैं, उन्हीं चीजों को और ज्यादा मीनिंगफुली सोचने का हमें समय दे रहा है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू टू डू, यू हैव बीन डूइंग इट। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज विद इन, यू जस्ट हैव टू टेक आउट सम टाइम एंड सम कॉन्शियस एफर्ट टू मेक दैट वन और टू टाइम का जो हमने काम किया और सक्सेस मिल गई, टू मेक इट अ हैबिट, टू मेक सक्सेस अ हैबिट। And success will become habit when that practice becomes a habit. So we've been practicing it, but we've not made it a habit. We've never applied a conscious thought to why this happened. ये मैंने जो अभी अभी किया, ये मैंने क्या किया, और ये मैं अगर एक बार कर सकता हूँ तो मैं ये हर रोज क्यों नहीं कर सकता, हर एक के साथ क्यों नहीं कर सकता। अगर कहीं मैं किसी की गलती को नजरअंदाज कर सकता हूँ, और नजरअंदाज का मतलब ये नहीं कि होने दूं गलती, लेकिन उस चीज को बिल्कुल वही गलती पे ना अटक करके उस व्यक्ति को सुधारने के लिए शुभ भावना से उसको करेक्ट करूं, उसको सहयोगी बनूं कि भाई आपने गलत किया, लेट अस टुगेदर करेक्ट दिस। अगर मैं कहीं कर सकता हूं तो हर जगह क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज स्टॉपिंग मी? व्हाट इज मेकिंग दैट वर्च्यू ऑफ माइन टू बी रिस्ट्रिक्टेड, टू बी क्लोज्ड? व्हाई इज इट नॉट फ्लोइंग फ्रीली टू एवरीवन? So every situation has come to teach me something. Let me learn the lesson and move ahead. And also, jitna bada challenge aap overcome karte hain, utni zyada glory milti hai. Ek chota sa video aapko dikhate hain to make this clear. So, no mud, no lotus. कोई problem ही नहीं आएगी तो कुछ नहीं सीख सकेंगे। कोई situation ही नहीं आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन होता क्या है, कोई भी situation आती है तो हम उस situation को, उस situation में उसको समझते नहीं है और अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस। कैन यू ऑल कम इन पेयर्स ऑफ टू? बैठे बैठे जस्ट चूज अ पार्टनर, जो भी आपके बगल में बैठे हैं, जस्ट मेक दैट पर्सन योर पार्टनर फॉर दिस एक्टिविटी। जस्ट चूज अ पार्टनर, ठीक है? कोशिश कीजिए जो आपके साथ ही है उनको ना बनाए पार्टनर। अगर उनके साथ ही बैठे हैं तो चूज अ डिफरेंट पार्टनर, आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो गया? वी ऑल गॉट अ पार्टनर। कहीं कोई अकेला बैठा है तो किसी के साथ आके बैठ सकते हैं, जस्ट मेक अ पार्टनर। और आप में से जो आप दो लोग इकट्ठा आए हैं, आप में से एक व्यक्ति डिसाइड कर लीजिए कि एक व्यक्ति को मुट्ठी बंद करनी है, दूसरे को खोलनी है, तो कौन मुट्ठी बंद करेगा ये डिसाइड कर लीजिए आपस में। जो मुट्ठी बंद करेगा वो डिसाइड कर लीजिए, और मुट्ठी कौन खोलेगा ना, वो भी अंडरस्टूड है, ठीक है। अब जिसने मुट्ठी बंद की है वो एक बार मुट्ठी दिखाए अपनी, ऊपर करे मुट्ठी जिसने बंद की है, एकदम कस के टाइटली बंद करनी है आपको, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति को ये बंद मुट्ठी खोलनी है, 30 सेकेंड्स है आपके पास, प्लीज डू, प्लीज ट्राई, आपकी मर्जी। ओके, टाइम अप। किस किस ने मुट्ठी खोल दी? अच्छा ठीक है, ऑनेस्टली जिस जिसने मुट्ठी बंद की थी, अब एक बार वो हाथ उठाएं, जिस जिसने मुट्ठी बंद की थी, खुली ना खुली कोई बात नहीं, बंद की थी। क्या मैंने आपको ये कहा था कि आपको मुट्ठी खुलने नहीं देनी? तीस सेकेंड की जरूरत ही नहीं थी, मैंने ये तो कहा नहीं ना कि आपको मुट्ठी खुलने नहीं देनी। हम अपने आप यही समझ लेते हैं, दूसरे का काम बन गया मतलब मेरी, दूसरे की जीत मतलब मेरी। तो जहां एफर्ट लगाना ही नहीं था वहां हम एफर्ट लगा रहे हैं, और 30 सेकेंड ऐसे चले गए। और ये तो मैंने टाइम लिमिट कर दिया था, अगर मैं इस चीज को ओपन चैलेंज कर देती आप वो जब तक खुल ना जाए तब तक करते रहना है, वो भाई साहब तो खड़े ही हो गए थे। तो वही तो ना, तो हमने अपनी हार और जीत को कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, और हम वहां टाइम और एफर्ट लगा रहे हैं जहां शायद लगाना ही नहीं है, लगाना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये कहा ही नहीं गया था कि आपको खुलने नहीं देनी। और ये बंद मुट्ठी किस चीज को सिंबलाइज करती है? हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारा जो दिल है वो लगभग हमारे फिस्ट के साइज और शेप का होता है लगभग। तो ये आपका दिल है, आपने अपने दिल को इतना टाइटली बंद कर रखा है दूसरे व्यक्ति को उसमें घुसने के लिए। माई गॉड, सच में इसलिए कहते हैं अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, नहीं तो वहां डॉक्टर बैठ करके आपको बेहोश करके दिल खोलेगा आपका। अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ेगा, तो दिल को खोलिए, किसी को आने तो दीजिए, आप पहली बोल के बैठे हैं। क्यों हो रही है इतनी प्रॉब्लम्स? तो ये हमारी बंद मुट्ठी नहीं है, ये हमारा हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो लगता है हम पीछे हो रहे हैं। और ये अधिकतर 90% कुछ इस तरह के चैलेंज ही होते हैं जो चैलेंज होते ही नहीं है, केवल हमारी मानसिकता होती है। अब इसी एक्टिविटी को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से जिसने मुट्ठी बंद की थी वही मुट्ठी बंद करेंगे, और एक बार दिखाइए मुझे कि आपने मुट्ठी बंद कर ली, ठीक है। अभी नीचे कर लीजिए, और जिनको मुट्ठी खोलनी है आपके पार्टनर को, वो टच नहीं करेंगे उनको बिल्कुल भी, बस उनको देखिए, मुस्कुराइए, पूछिए क्या है आपकी मुट्ठी में, क्या छुपाया है आपने मुझसे। आप किसी को इतना प्यार से पूछेंगे क्या छुपा रहे हैं तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, देख लो। अभी रुकिए रुकिए, अभी जल्दी नहीं है, अभी और भी है। खुल गई मुट्ठी बिना एफर्ट किए, एक सेकंड में खुल गई मुट्ठी, ठीक है। अभी एक बार फिर से मुट्ठी बंद कीजिए, जिसने मुट्ठी बंद की थी एक बार फिर से मुट्ठी बंद कीजिए, ठीक है। फिर से नीचे कर लीजिए। अब जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति जिसको मुट्ठी खोलनी है, आपको कई बार लगेगा हम ही पहले क्यों बोले, हर बार तो हम ही बोलते हैं, चलो आप बोलो भी नहीं, कुछ नहीं करो, ठीक है। आप बस उनको देखिए, स्माइल कीजिए, बोलिए नहीं, ना टच करना है ना बोलना है, बस फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा दीजिए। मुट्ठी खुल गई,
खुल गई? रुकिए रुकिए रुकिए, जल्दी नहीं है, और एक बार मुट्ठी बंद कीजिए जिसने मुट्ठी बंद की थी, नीचे कर लीजिए। अब जिनको मुट्ठी खोलनी है आपको एफर्ट भी नहीं लगाना, बोलना भी नहीं है, बस उनको कोई चीज गिफ्ट दे दीजिए, कोई अपनी पेन ही पकड़ा दीजिए। मुट्ठी खुल गई? खुल गई, अब बजाइए ताली। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये एक ही तरीका है, फोर्स लगाना ये एकमात्र तरीका है, गुस्सा करना ये एकमात्र तरीका है, लेकिन अगर आप क्रिएटिवली सोचेंगे तो इस एक तरीके के अगेंस्ट आपको चार तो मैंने अभी बता दिए। हम सोचते हैं बिना ऐसे कोई काम नहीं करेगा, बिना सख्ती के, बिना गुस्सा किए, बिना डराए, बिना एफर्ट के, बिना फोर्स के। एफर्ट तो अच्छी बात है, एफर्ट सबको करने चाहिए, लेकिन बिना फोर्स के हमारा कोई काम नहीं करेगा। फोर्स लगाना ये एकमात्र सोल्यूशन हमारे पास रह गया है आज की डेट में, लेकिन बिना फोर्स के चार तो अभी हमने कर लिए। लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स, आर वैल्यूज आर द ग्रेटेस्ट फोर्स, गिविंग somebody, something, फिर वो मोटिवेशन ही क्यों ना हो, अप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, थोड़ी हौसला अफजाई क्यों ना हो। माना उसने 10 गलतियां की हैं, एक दो अच्छी बात भी तो की होगी ना, उसके लिए ही कम से कम उसको हौसला दे दीजिए। दिस गिविंग विल ओपन देयर हार्ट, एंड वंस यू सिट इन देयर हार्ट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको बस एक एफर्ट करना है, उनके दिल में जाके बैठना है, उसके बाद तो वो आपके हैं, आप जो मर्जी चाहे करवा लीजिए उनसे। लेकिन हम अपने फोर्स से क्या करते हैं, उनके दिल को बंद कर देते हैं। अब जो भी हम बातें बोल रहे हैं वो उनके ईगो वाले हेड से टकरा करके लौट रही है, उनके दिल तक पेनिट्रेट ही नहीं कर रही, और फिर वो व्यक्ति चैलेंज बनता जा रहा है, फिर वो सिस्टम जहां ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करके दे रहे, वो चैलेंज बनता जा रहा है। एक एक चीज सुबह से लेकर रात तक चैलेंज 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 चैलेंज। क्यों? क्योंकि हमने उन पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने के रास्ते पहले तो अपने दिल में बंद कर रखे हैं, और सोच लिया उसने भी कर ही रखे होंगे, तो सीधा फोर्स ही अप्लाई करना है। सो भले ही आपको दिख रहा है कि दलदल है, कीचड़ है, टेंशन है, लेकिन उस टेंशन में कमल कौन सा खिलाना है, वो आपके अंदर है, इट इज देयर विद इन यू, एंड वंस यू रिकॉग्नाइज दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद सो मच एल्स टू डू, यू विल हैव सो मच टू गिव, and that will make your life so beautiful. So just to summarize, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में दो चीजें अक्सर करके आती हैं, या तो barriers, speed breakers, या diversions, barriers, या तो sightseeing. कोई भी barrier पे आकर के गाड़ी आप क्या करते हैं, speed breaker आता है तो गाड़ी को क्या करते हैं, slow करते हैं, फिर speed breaker को cross करते हैं, और उसके बाद फिर वही स्लो स्पीड चलती रहती है, कई बार पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती है। सो द बैरियर वॉज नॉट टू स्टॉप यू, इट वॉज जस्ट मेंट, इट जस्ट केम टू गिव यू सम टाइम, थोड़ा स्लो होकर के अपने आप को देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन छूट गया, किसको साथ लिया, क्या मिला, और उसके बाद फिर उन लर्निंग से स्पीड बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। और साइट सींग्स आते हैं क्यों, ताकि रास्ता आपको अकेला ना लगे, लोनली ना लगे। अभी हमने बहुत आज के दिन में लोनलीनेस की बात की ना, द बिगेस्ट पॉवर्टी बताया डॉक्टर प्रेम बसंत जी ने कि इट इज लोनलीनेस, अभी भी बताया स्वामी भाई ने, तो लोनलीनेस ना लगे हमें, तो चलो ठीक है, कहीं कुछ मीठा लिया, कहीं कुछ खट्टा लिया, और मजा आ गया जर्नी में, और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे और आपको इकट्ठा कुछ खट्टा मिला तो हम और अच्छे दोस्त बन गए, अब साथ में चल रहे हैं आगे। सो साइट सींग्स में रुकना नहीं है, उलझना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना, और बैरियर्स में इंट्रोस्पेक्ट, स्लो डाउन, इंट्रोस्पेक्ट, क्या पाया, क्या खोया, कहां जाना है, और स्पीड बढ़ाइए, आगे चलिए. एंड दिस विल मेक योर जर्नी ब्यूटिफुल. फिर वो चैलेंज नहीं लगेगा. इट विल बी योर मीन्स टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस, टू ऐड समथिंग न्यू इन यू. एंड देन लाइफ इज अ गेम, प्ले. एक बैट्समैन कभी बोलेगा बॉलर से सीधी सीधी बॉल डालना तो ही खेलूंगा? बोलेगा? हम बोलते ढंग से बात करोगे तो ही करेंगे, अच्छे से बोलोगे तो ही काम होगा. आप अच्छे बैट्समैन हैं तो सामने वाला कैसे भी बॉलिंग करेगा, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हर बॉल पर, चलो सिक्सर नहीं मार सकते, बाउंड्री पार नहीं, बैटिंग तो करें. हम तो बैटिंग ही नहीं करते, हम तो वहीं छोड़ देते हैं. ऐसे करेंगे तो हम काम ही नहीं करेंगे, रोक देंगे फाइल, डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, ट्रांसफर करा लेंगे उसका. ये गॉट ऑल, यू नो बेटर. हमारा काम क्या है? बैटिंग करना. और अच्छा बैट्समैन कौन होता है? हर बॉल पे जो अच्छी बैटिंग करे. तो ये आर्ट है, उस सिचुएशन से कैसे डील करें, कैसे अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं. और इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आप यहां आए हैं, महसूस भी कर रहे होंगे, और हमारे बीच में बहुत अनुभवी हमारे सीनियर दीदी हैं जो इस बात पे आपको और बेहतर ज्ञान देंगे. तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि हम सिचुएशंस को चैलेंज नहीं देखेंगे, दिल को अपने दूसरों के लिए खोलेंगे, और मन को वेस्ट से, वरी से फ्री करके सॉल्यूशन आने की जगह देंगे. तो बस अपने दृष्टि, अपने विजन, अपने दिल और अपने दिमाग को, अगर हमने इन तीन को भी अगर हमने खोल लिया, हमारी कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और सिचुएशन चैलेंज नहीं बनेगी. या तो लर्निंग बनेगी या अपॉर्चुनिटी बनेगी, कुछ भी बनेगी, लेकिन चैलेंज नहीं बनेगी. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.
बहुत बहुत थैंक्स सुधात्री बहन. लग रहा था बस सुनते जाएं, ऐसा लग रहा था ना, सभी इतना दत्चित होकर सुन रहे थे और सॉल्यूशंस भी मिल गए, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया सुनते सुनते ही, 45 मिनट्स में ही. तो वैसे तो अब वैसे होप करते हैं कि आप इस बार आए हैं, आने वाले समय में भी आते रहेंगे, इस तरह के लेक्चर्स आप सुनते रहेंगे. बहुत बहुत थैंक्स सुधात्री बहन. एक बार एक अच्छा राउंड ऑफ अप्लॉज सुधात्री बहन के लिए. हमारे बीच में वैसे तो आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारे अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन कुछ का ही अनुभव हम सुन पा रहे हैं. तो उनमें से एक हमारे बीच में रिस्पेक्टेड ब्रदर संजीव कुमार भाटी जी हैं. मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं और 5 मिनट अपना अनुभव 5-10 मिनट में शेयर करें. आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बैच 2008 के हैं, प्रेजेंटली डायरेक्टर आर्काइव्स इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं. आपने बीएससी ऑनर्स बॉटनी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया. आपने 6 असाइनमेंट्स किए हैं इंडियन मिशंस के अब्रॉड में, दुबई, हांगकांग, बुल्गारिया, देन फ्रांस, देन बेल्जियम, बांग्लादेश. इसमें से आप रीयूनियन आयरलैंड में काउंसिल जनरल थे, फ्रेंच रिपब्लिक में भी काउंसिल जनरल के रूप में आपने कार्य किया, और बांग्लादेश में आप असिस्टेंट हाई कमिश्नर के रूप में रहे. मैं आपका वेलकम करती हूं, आप मंच पर आए और अपना अनुभव शेयर करें. वेलकम ब्रदर संजीव कुमार भाटी जी, तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं.
नमस्कार, ओम शांति. एक छोटी सी करेक्शन कहना चाहूंगा, इंडियन फॉरेस्ट नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस शायद. जी, नो प्रॉब्लम, ये तो काफी कॉमन है. मेरा काफी लंबा परिचय दिया सिस्टर ने, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर आध्यात्म के क्षेत्र में मैं केवल नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी हूं, और इसको प्रूव करने के लिए मैं अपने दोनों बेटों को साथ में लाया हूं। तो इस क्षेत्र में मैं अपने इस क्षेत्र में मैं इन दोनों बच्चों के बराबर ही हूं। आध्यात्म के क्षेत्र में ये मेरा दुर्भाग्य समझिए कि मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और पिछले वर्ष मेरा सौभाग्य था कि सिस्टर विधात्री हमारे ऑफिस में रक्षाबंधन के अवसर पर आई थी और मुझे ब्रह्म कुमारी के बारे में जानने का अवसर मिला। हालांकि ब्रह्म कुमारी से मेरा पहला इंटरेक्शन नहीं है, इससे पहले रियूनियन आइलैंड फ्रांस में एक सिस्टर सेसिल थी, उनको देखकर एक अलग ही अनुभूति होती थी और वो मेरे इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। मैं आज का जो ये टॉपिक था एमर्जिंग स्ट्रॉन्गर देन चैलेंजेस, मुझे कहा गया था कि इसके बारे में कुछ बोला जाए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूं तो मैं इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं। लेकिन जो सिस्टर विधात्री ने कहा कि हमें एक स्पेस देकर, एक समय, एक रुक कर जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसमें हमें नए सॉल्यूशंस मिलते हैं, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं और मैं समझता हूं कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने जिंदगी में इसको आत्मसात करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं ब्रह्म कुमारी इस संस्था का बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां बुलाया, इस स्वर्ग जैसे स्थान पर हमें कुछ दिन रहने का मौका दिया। और मैं तो कहता हूं कि यहां रहना ही अपने आप में एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, और जो यहां हम सीखते हैं वो तो बोनस है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए हैं और ये भी कुछ सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो बाय वन गेट टू फ्री, तो मेरे बच्चे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा सीख पाए हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस क्षेत्र में नर्सरी का विद्यार्थी हूं, तो मेरे बच्चों ने जो यहां सीखा है वो अपने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। पहले मेरा बड़ा बेटा अलक्षेंद्र।
ओम शांति, नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम अलक्षेंद्र भाटिया है, मैं 8 साल का हूँ, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैंने आज सीखा है कि अगर सोचिए आप दुखी है तो इसका मतलब है आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो, आपको पॉजिटिव थॉट्स पर सोचने चाहिए। बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव थॉट्स से जल्दी से पॉजिटिव थॉट्स सोचने लगोगे, आपको कन्वर्ट करने नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स। मैंने ये आज सीखा था, धन्यवाद।
ओम शांति, नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम सात्विक भाटिया है, मैं 8 साल का हूँ, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। आज मैंने सीखा था कि जो हम मन में सोचते हैं उसका असर इंस्टाइन में पड़ता है। धन्यवाद
धन्यवाद। ओम शांति।